मनुष्य जब अपने हाथ से फूल लगाता है, कितने सुंदर। मनुष्य के हाथ के बनाए हुए बाग बगीचे कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, पर जंगल में खिले हुए उस फूल के मुकाबले में सब फीके हैं। भारत में ऋषियों, महात्माओं, विद्वानों की लंबी परंपरा है। सब पूज्य हैं, माननीय हैं, आदरणीय हैं, पर कहीं ना कहीं वो सब सुसंस्कृत, घड़े हुए, बनाए हुए, रचित किसी न किसी गुरु के हाथ के काढ़े हुए, पर बड़े परिष्कृत। ऐसी ऋषि परंपराओं के बीच में खिलता है फिर एक फूल जिसका नाम है कबीर। पर ये वो फूल है जो किसी माली के हाथ का नहीं, जो शायद स्वयं परमात्मा के हाथ का लगाया है, जो जंगल नुमा हो चुकी मनुष्य जाति में खिला हुआ ऐसा फूल है जो अपनी महक से, अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी ऊर्जा से एक ऐसी क्रांति लेके आता है जिस क्रांति में सभी परिष्कृत, सुसंस्कृत, महात्मा, विद्वान फीके पड़ जाते हैं। कबीर की वाणी तीखी है, लठ जैसी, पर ये वो लठ है जो अंधकार का, तमस का घड़ा तोड़ देता है। पर कबीर की वाणी कितनी मीठी, मधुर है कि जो सुनने वाले या पढ़ने वाले की आत्मा को रस से भिगो देती है। कबीर अपने लिए कुछ भी कभी नहीं कहता, क्योंकि वो कहता है मैं तो हूं ही नहीं, मेरे भीतर तो वही है अलख, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, जो निरंजन है, जो अभेद्य है, और उस अनिर्वचनीय सत्ता को गुरु की कृपा से जाना। पर ऐसी अद्भुत बात, कबीर ठहरे निर्गुणीय संत और उनका गुरु ठहरा मूर्ति पूजक स्वामी रामानंद। बड़ा प्यारा है इनका संबंध, गुरु मूर्ति पूजक, और चेला कहता है चार भुजा के भजन में भूल परे सब संत, क्योंकि जो अनंत है उसकी तो मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। और अपने लिए वो कहता है कि मैं तो उसका सुमिरन करता हूं जिसकी अनंत भुजाएं हैं, सिर्फ चार नहीं। ये चार भुजा विष्णु के लिए कह रहे हैं, अष्टभुजा दुर्गा के लिए कह रहे हैं। मानव रचित, मानव कृत मूर्तियों को जो नहीं पूजता, न मानता है, जो उपहास करता है, जो व्यंग करता है पंडितों पर, मौलवियों पर, जो उपहास करता है हर किस्म के पाखंड का, परंपराओं का जो खंडन करता है, और सच की आवाज को यूं बुलंद करता है और पुकार के कहता है कि मैंने तो अपना घर जला लिया, लुका हाथ में लिए घूमता हूं, अब आज जो मेरे साथ चले तो वो ये तैयारी करके आए कि कबीर अब उसका भी घर जलाएगा। ये घर होगा रूढ़िवादिता का, परंपरा का, पाखंड का, छल का, छद्मता का, सबका नाश करता है। पर फिर कितना नम्र है, कितना कितना नम्र। और अपने सद्गुरु की स्तुति गाते हुए ऐसे ऐसे अद्भुत, ऐसे ऐसे अद्भुत प्रसंग देता है कि मनुष्य सोच में पड़ जाए। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सोजन बिसर न जाए, जब साहिब कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। कबीर ना राम कहते हैं ना अल्लाह, कबीर कहते हैं साहिब। साहिब शब्द में एक अजब सी मिठास है, साहिब शब्द में एक अजब सा समर्पण है। हम बड़े छोटे से, हम ठहरे जात के जुलाहे, जो सारी जिंदगी दूसरों के उपहास के, दूसरों के व्यंग के, दूसरों की लांछना के, ठीकरे सहते रहे, कोई दलिद्री कहता रहा, कोई मलेच्छ, कोई जुलाहा कहता रहा, तो कबीर अपने लिए जब बोलते हैं उतने बार कहते हैं, हम तो दास, कहे कबीर दास। पर फिर इस दास के लिए वो कहते, तीन लोक डरना है, अब मुझे भय नहीं किसी का। क्यों नहीं? क्योंकि अब मेरा गुरु मेरे सिर पर है। यहां गुरु का अर्थ गुरु का शरीर सिर पर नहीं है, क्योंकि कोई भी गुरु के शरीर को सिर पर धारण नहीं कर सकता, पर यहां गुरु का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान मेरे सिर पर है, और जब तक इस ज्ञान रूपी गुरु की आज्ञा में मैं चलता हूं, मुझे किसका डर, कैसा डर। और वो साहेब की कृपा हुई, तभी तो गुरु मिला। इसलिए कबीर कहता है, देर ना करना, अगर ऐसा सदगुरु मिल जाए जो तेरे बुझे दीपक को जलाएगा, तो फिर उसको सब दे देना। मन दिया तिन सब दिया, मन की लार शरीर अब देवे को कछु नहीं, यूं कहे दास कबीर। कबीर कहता है, गुरु मिल जावे तो सब दे देना, सिर्फ तन ही मत झुकाना उसके आगे, मन भी दे देना। और ये मन और ये शरीर दोनों संयुक्त हैं, दोनों जुड़े हैं। शरीर झुकता है पर मन नहीं झुकता, पर जब मन झुक जाए तो शरीर तो अपने आप से ही झुक जाएगा। कबीर कहता है, तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार, रे उतार अपने सिर से सारे बोझ को, हो निर्भार। कबहू कहे कि मैं दिया, घणी सहेगा मार। और साथ ही कबीर चेता भी देते हैं, सावधान भी कर देते हैं कि कहीं चिल्लाने मत लग जाना, गुरु को तन दे दिया, मन दे दिया, कहीं कहने मत लग जाना कि मैंने समर्पण किया, क्योंकि जैसे ही कहा मैंने समर्पण किया, घणी सहेगा मार, खूब मार पड़ेगी, क्योंकि ये तेरी मैं ही तुझको पीड़ा देगी, ये तेरी मैं बकरे की नाई कटने के लिए ही होती है। सो मैं मत कह, मत बोल, मैं बस इतना जान कि झुकना है गुरु के आगे, तो बस झुक जाना है। गुरु साहिब कर जानिए रहिए शब्द समाए, गुरु जो शब्द दे, गुरु जो ज्ञान दे, बस उसमें समा जा। कबीर ज्ञान सुनने के ऊपर जोर नहीं देते, कबीर उल्टे इस प्रकार के सुनने और उन शब्दों को पढ़ने जो किन्हीं ग्रंथों में हो, इसका तो बड़े जोर से खंडन करते हैं। लिखा लिखी की नहीं, देखा देखी बात, देख पढ़ मत, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब वो पढ़ने की बात कहाँ और सुनने की बात भी कहाँ, पर कबीर गहरी बात कहते हैं। कबीर उथली बात कहता ही नहीं, बोल सकता नहीं, क्योंकि कबीर ठहरे खुद ही बड़े गुरु गंभीर। कहता है, शब्द में समा जा, शब्द के साथ यूं तेरे मन की सुरत जगे, कि शब्द लीन हो सुरत में और सुरत तुझे पहुंचाए वहां, जहां शब्दों की पहुंच नहीं, जहां मन की पहुंच नहीं, जहां बुद्धि का जोड़ तोड़ ना चले। कबीर का वचन बड़ा प्यारा, सिखाते हैं बड़े प्रेम से। वो कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला हमको दई पहचान, मेरी पीड़ा को जो पहचाने, मेरी दिल की कसक को जो जाने, ऐसा ढूंढने से भी नहीं कोई मिलता है। अपना कर कृपा करे ले उतार मैदान, पर जब ही साहेब कृपा कर दे तो फिर जरूर किसी न किसी सदगुरु को जीवन में भेजेगा, और फिर ये सदगुरु हाथ पकड़ के उतारेगा साधना के मैदान में, जिसमें फिर तू जूझ जाना सूरमे की भांति। और सूरमा मरने के लिए जाता है युद्ध क्षेत्र में, बचने के लिए नहीं। मरो गुरु के प्रेम में, मरो। पर अजब बात है, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहें, ऐसा कोई न मिला पकर छुड़ावे बाहें। कबीर के इन वचनों में कबीर की वह पीड़ा है जो गुरु मिलने से पहले की है। वो पुकार के कहता है, नहीं कोई मिल रहा जो पकड़े मेरे मन को, मेरे हृदय को, भरे प्रेम से, भरे ज्ञान से, और इस संसार के, इस भव सागर के पार ले जाए। कोई मिलता नहीं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। यहां गुरु को गुरु नहीं कहते, सदगुरु नहीं कहते, गुरुदेव नहीं कहते, यहां गुरु को शब्द दिया है प्रेमी। प्रिया प्रियतम का रिश्ता है और कह रहे हैं मैं ढूंढता हूं और कोई मिलता नहीं। और मिलने की निशानी क्या? तो कबीर कहते निशानी बस एक, जिसको मिलके तेरे मन का विष भी अमृत में बदल जाए, तेरे जीवन से घना जहर का कोहरा छट जाए और तेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सोजन बिसर ना जाए। गुरु अर्थ ज्ञान, गुरु अर्थ ऐसा प्रकाश, ऐसा सूर्य, ऐसा आदित्य जिसके जीवन में आ जाने से तमस नष्ट हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। अब पूछते हैं कबीर से कि कबीर, ऐसा गुरु अगर मिल जावे तो शिष्य क्या करे? कबीर कहते हैं अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो बस फिर शिष्य ये करे कि सब कुछ उसको दे दे, तन भी मन भी सब दे। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को, सब कुछ दे, सब दे दे। पर गुरु कैसा हो? गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। शिष्य दे, सब दे, बेशर्त दे। पर गुरु कैसा चाहिए जो ले नहीं? और कबीर ने इस बात को खूब सच किया। सारा जीवन जुलाहे का काम करते रहे, कभी किसी से ना दान लिया ना दक्षिणा, और कहा मेरे ये दो हाथ सलामत हैं। और मेरे दृष्टि में तो शायद कबीर पहले कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने अपने हाथ से कमा करके खाने को और काम करने को इतनी शोभा दी है, इतना सम्मान दिया है कि सुना है कि उनके चेले भी शर्मिंदे हो जाते थे कि गुरुदेव अब काहे को काटते हैं सूत, काहे चद्दर बुनते हैं, काहे बेचने जाते हैं। पर कबीर हंस के हर बार कहते कि जब तक कबीर जिंदा है कबीर की खड्डी चलेगी, कबीर जुलाहे का बेटा है और जुलाहा बनकर जिएगा, और जब तक मैं अपने हाथ से अपने लिए कमा रहा हूं मैं कभी भी किसी का गुलाम न रहूंगा, चेलों का भी नहीं। चेले आज हैं कल भाग जाएं तो क्या करेगा गुरु, आज पूजते हैं कल ना पूजे तो क्या करेगा गुरु, आज सर पर रखा के शोभा यात्रा निकालें और कल उतार के नीचे फेंक दे, ऐसी गुलामी कबीर को मंजूर नहीं। तो कबीर अपने वचनों में खुद ही कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरुओं में भी बड़े फर्क, गुरु भी कई प्रकार के हैं। और गुरु गुरु में भाव करने से पहले यह जान लेना, जो तुझे राज बताए भीतर के, जो तुम्हें ज्ञान दे, जो तुम्हें दांव पेच सिखाए मन से पार जाने के, जो दांव पेच सिखाए इस मन की खाई से निकल आने के, असल गुरु वही है। और ऐसे सदगुरु के मिलाप को तो तरसना ही चाहिए, क्योंकि मिल जावे अगर ऐसा सदगुरु तो फिर जीवन में परम कल्याण और परम आनंद और परम सौभाग्य उतर आता है। कबीर कहते हैं अगर हम बंधे हैं तो हमें बंधा हुआ गुरु ही मिलेगा। अगर हमारे मन में संसार की कामनाएं और वासनाओं के जाल हैं, अगर हम इन बंधनों में हैं, तो हमारा गुरु भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय? चेला बंधा संसार में, गुरु बंधा चेले के संसार में, कौन किसको छुड़ाएगा? कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए, करनी ही है सेवा तो उसकी कर, जो स्वयं बंधनों से मुक्त है, जो स्वयं मस्त है, फक्कड़ है, फकीर है, जो खुद आजाद है, वही तुम्हें आजादी का स्वाद चखा सकता है, जो खुद मस्त है, वही तुम्हें नाम के इस प्याले का रस पीना सिखाएगा। पर अजब बात, इतना ही आसान अगर होता ऐसे सद्गुरु को मिलना, तो क्या ही बढ़िया बात होती। और कभी कभी गुरु को तलाशते तलाशते आदमी ऐसी जगह पहुंच जाता है और ऐसे को गुरु बना लेता है जो खुद अंधकार में भटकता फिर रहा है। तो क्या करे, क्या करे? असल गुरु को खोजे? कैसे खोजे? तो खोजने का ढंग उनने कहा बस एक, और वो सिर्फ एक, कि तू पुकार, कि तू प्रार्थना कर उस प्रभु को कि ईश्वर ऐसी कृपा दे कि कोई ऐसा गुरु मिल जावे जो हर्ष और शोक से स्वयं भी परे हो और मुझे भी हर्ष और शोक से मुक्त कर दे। गुरु हमारा गगन में चेला है, चितमा है, सुरत शब्द मेला भया बिचुरत कबहू ना है। हमारा गुरु हमारे गगन में। यहां गगन शब्द का अर्थ है आंतरिक आकाश। गुरु बाहर नहीं है, गुरु तेरे भीतर। चेला है, चितमा है, बड़ी प्यारी बात है। चेला कोई और नहीं, हमारा मन होता है, चित ही चेला है, और भीतर बैठा परमात्मा ही गुरु है। यही तो कारण है कि रामानंद जैसा गुरु है उसके वो पांव धो पीता है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, पर फिर भी कबीर यह बात कहते हुए जरा भी संकोच नहीं करते कि मेरा गुरु मेरे गगन में, मेरे ही भीतर में। पूछा था एक बार कमाल ने कि साहेब, स्वामी रामानंद ठहरे मूर्ति पूजक, आप ठहरे निर्गुणीय, ये जोड़ कैसा? तो हंस के कहा था कबीर ने, साहेब की साहेब जाने, वो जो करे सो करे। पर अपनी प्रीति को वो कहीं से कम नहीं होने देते और खूब अच्छे से कह रहे हैं कि कबीर का गुरु उसके अंतर में है। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, जब तू अपने भीतर के इस गुरु से मुलाकात कर लेगा तो अंतर छिपे उस अगोचर उस अनंत के साथ तेरी मुलाकात हो जाएगी। दीनी वस्तु लखाए, लखाए मने जान लेगा। पर जाने कैसे? तरीका भी कहते हैं, सुरत शब्द मेला भया, जोड़, सुरत को जोड़, जगा अपनी सुरत को। कैसे? कहा शब्द से। किस शब्द से? अब वह शब्द राम भी हो सकता है, ओंकार भी हो सकता है, सतनाम भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है। अवधु ऐसा ज्ञान विचारम, किसी भी ज्ञान के पूरक शब्द को, किसी भी ईश्वर के वाचक शब्द को तू अपनी साधना का आधार बना ले। सांस सबद सुरत, खूब त्रिगुणात्मक जोड़ी हुई तीन सा की, सा सबद कबीर शब्द न कहेगा। ज्ञान तो भीतर उतर आया पर जुबान का क्या करेगा? जुबान तो वही फूहड़ है, जुबान तो वही बनारसी, पर हमको जुबान से क्या लेन देन? हमें तो लेन देन है उस खुशबू से, उस मिठास से जो इस जुबान से ऐसी झरती है कि बड़े बड़े पंडित भी घड़ों पानी भरते रह जाएं, पर कबीर का सामना कौन करे, कौन ठहरे कबीर के आगे? फिर कहती हूं, तीन सा का मेल है, सा शब्द, सा सुरत, और सुरत और शब्द जब दो आपस में जुड़े सांस की डोरी के साथ बंध गए, तो फिर भीतर ऐसा प्रकाश, फिर भीतर ऐसी निर्विकल्पता, ऐसी आनंद की बरसात फिर है भीतर। कबीर का वचन सुनो, कहता है कबीर, सतगुर हमसे रीझ के एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ऐसा प्रसंग कहा गुरु ने, ऐसी अद्भुत बात कह दी गुरु ने, ऐसा भेद बता दिया गुरु ने कि मेरे भीतर प्रेम का बादल बरस गया है और मैं भीग गया हूं। मेरा तन भीग गया, मेरा मन भीग गया, मेरी आत्मा भीग गई। सतगुरु के उपदेश को कहा सुनो और फिर विचारो, और जिनको गुरु ना मिले, गुरु का विचार ना मिले, ऐसों की हालत तो क्या हो, बोले सिर्फ जम के द्वार तक जाएंगे, अर्थात सिर्फ मरेंगे, जिएंगे और मरेंगे। और गुरु जिसको मिल जाए सिखा देता है, जीना सिखा देता है, वो जीता है, पल पल जीता है, हर पल हर सांस में अपनी शब्द अपनी होश को संभालता है, और फिर धीरे धीरे यह मस्ती उसके पूरे जीवन में छा जाती है। और गुरु तो कहा वो सूरमा है जो ऐसा तीर मारेगा बाहर घाव न दी सही, बाहर तो बिल्कुल ठीक ठाक लगेंगे पर भीतर सब चकनाचूर, सब टूट फूट गया। देखने को लगेगा कि कबीर तो कुछ बदला नहीं, वैसे का वैसा, वैसे उठता बैठता चलता फिरता, वैसे जुलाहा, वैसे बुनता है चादर, वैसे बेचने जाता है, पर कबीर कहता कोई मेरे भीतर झांक के देख सके तो सब बदल चुका है। ऐसा तीर चलाया है गुरु ने। सतगुर शब्द कमान कर बाहन लागा तीर, एक जो बाहा प्रेम से भीतर बिंधा शरीर। एक ही तीर काफी है, बहुत तीर तो चाहिए ही नहीं, बंदा एक ही बार में मर जाए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे सुंदर क्या हो सकता है। पर बड़ी अजब बात है, गुरु पूरा मिल गया पर शिष्य अभी भी अधूरा। सोचने की बात है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कमी होगी। पर आदमी बड़ा होशियार बड़ा चालाक, जल्दी से सारी जिम्मेदारी डाल देगा गुरु के ऊपर कि गुरु ने कृपा नहीं की है। गुरु ने अगर कृपा की होती तो हमारी भी समाधि होती। पर क्या यह सच है? अपने भीतर जरा झांक के देखें तो कबीर चीख चीख के उस सच को तुम्हारे भीतर बोलता हुआ तुमको भी दिख जाएगा। कौन सूरत ले आवई, कौन सूरत ले जाए, क्योंकि तू जितनी बार बैठता है सूरत टिकाने को उतने बार तेरी सूरत कहाँ की कहाँ गई, कभी यहां गई कभी वहां गई। कभी टिका तेरा मन स्थिरे, प्रश्न करते हैं कबीर, कभी मन टिका, कभी तू विचार शून्य हुआ? और अगर नहीं हुआ है तो जान ले कमी तेरे में। वासनाओं से भरे हुए मन में सूरत न जगेगी, कबीर का वचन, बास सुरत ले आवई शबद सुरत ले जाए। जिसके मन में वासना है उसका कुछ नहीं हो सकता। अब गुरु शबद दे दे, अब गुरु तो दे देगा, संभालोगे किस में, बर्तन ही नहीं है। गुरु अमृत उंढेल दे, क्या करोगे, कुछ नहीं, अमृत बिखर जाएगा। और यही रोज होता है। परिचय सुरत है स्थिरे, अपनी सुरत से परिचय तो कर, ऐसी बिगड़ी पड़ी है, ऐसी बेताली हुई पड़ी है। तो गुरु का कहा वचन कहां टिके, नहीं टिकता, नहीं टिकता, इसलिए वो भटकता ही रह जाता है। तो प्रेम करना सीखें, लव लगाना सीखें। कबीर प्रेम को लव कहता है। अब कबीर क्या जाने कि कभी अंग्रेजी में प्रेम को भी लव ही कहा जाएगा, पर कबीर की भाषा बड़ी प्यारी। उस जमाने में भी देखो कहीं ना कहीं से किस ढंग से लव शब्द आ गया उनकी भाषा में। लव का अर्थ यहां प्रेम है, लव का अर्थ हम लिव भी लगा सकते हैं। लव लागी तब जानिए प्रेम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी पहचान क्या है। तो कहा पहचान सिर्फ एक, छूट कभू नहीं जाए, कभी छूटती नहीं। जीवत लव लागी रहे मुए तहां समाए, जिंदा में लगेगी और फिर तुमको मार देगी। अब जब मर ही गए भीतर तो शरीर से जिंदे रहो कि शरीर से एक दिन मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लग गई लिव तो लग गई, अब हो गया प्रेम तो हो गया, यह पहचान है। लव लागी तब जानिए, छूट कभू नहीं जाए। और यहाँ मैं देखती हूँ आदमी का प्रेम आज है कल नहीं है, आज बड़ा गहरा है कल उड़ गया कपूर की तरह। आज बहुत याद आते हैं गुरु और फिर कभी दूर दूर तलक गुरु की छाया भी नहीं आती चित्त में, क्योंकि चित्त में वासना है तो वासना जिसकी है उसी को याद करता है बस। अब सुनो, अगर चाहते हो कि ये प्रेम तुम्हारे भीतर जगे तो कुछ करो। क्या करें, तोड़ो अपने आप को संसार से, भाग न जाओ। अरे जब कबीर नहीं भागे तो तुम क्या भागोगे, यहीं रहो, खूब टिको, खूब जमो। पर मन से ऐसी चोट करें कि सब छूट जाए। कबीर कहता है ना, कबीर गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवाज, रह घर में सुंदर घर में रह, पर अभिमान मत कर। मेरा है ये मत कह, क्यों? क्योंकि जिस जमीन के ऊपर तेरा ऊंचा घर बना है, इसी जमीन के नीचे तू एक दिन डाल दिया जाएगा और फिर तेरे ऊपर घास जमेगी और तेरे ऊपर लोग चलेंगे। अभिमान मत कर, मत कर अभिमान ना ऊंचे घर का ना सुंदर देह का। क्यों? क्योंकि कबीर कहता है ये देह तो बस 4 दिन है, छूटी तो फिर कभी मेल मुलाकात भी ना होगी। ऐसे ही जैसे सांप केंचुली उतार के फेंक दे तो फिर वापिस कभी आके अपनी केंचुली नहीं देखता है कि कहाँ छोड़ी, कब छोड़ी, कैसे छोड़ी। शरीर तो केंचुली है और तू इससे अलग, तो कैसे अलग है, कहाँ इसको पहचान ले। गर्भ मत कर, जवानी का गर्भ मत कर। क्यों? कहा ये वो फूल है जो सिर्फ दिवस 10 खिलेगा, टेसू का फूल है, 10 दिन खिलेगा और फिर पंखुड़ी पंखुड़ी हो गिर जाएगा। कबीर गर्भ न कीजिए चाम लपेटे हाड़, काहे का गर्भ प्यारे, हड्डियां हैं, इस हड्डियों के पिंजर के ऊपर चमड़ी लपेटी हुई है, अब काहे का मान करोगे, हड्डी का कि चमड़ी का। और चाहे तेरे सिर के ऊपर छत्र झूलता हो, है बर ऊपर छत्र तर तो भी देवे गाढ़, चाहे तेरे सिर के ऊपर छत्र झूलता हो, अर्थ तू राजा हो महाराजा हो तो भी इसी जमीन के अंदर तुझको गाड़ दिया जाएगा। तो जो छूट जाएगा, जो पास सदा रहेगा नहीं, उसकी फिक्र काहे करें। कबीर कहते ढूंढ उसे, जो आवे तो जाए नहीं, जाए तो आवे ना ही। कुछ ऐसा कमा ले, कुछ ऐसा व्यापार कर ले, कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त कर ले जो आती है फिर जाती नहीं और जाए तो आती नहीं। जाए का अर्थ यहां अवसर, जीवन। जीवन गया, अवसर गया, लौट के हाथ नहीं आएगा। आज अवसर है तो इस अवसर का लाभ ले और उसको कमा ले, जिसको कमा लेने के बाद, जिसके आ जाने के बाद, वो फिर कभी तुझे छोड़ के नहीं जाएगा। जो आवे तो जाए नहीं, क्या प्रेम, आज आवे तो जाएगा नहीं, पर जीवन जाए तो आवे ना है। जीवन चला गया तो फिर कभी हाथ ना लगेगा। सो लाभ ले, इस अकथ कहानी को सुन। कैसे सुनेगा, कैसे जानेगा? जानने का ढंग फिर वही, कहा प्रेम कर। काया कमंडल भर लिया उज्जल निर्मल नीर, शरीर को कमंडल समझ और इसके भीतर भर उज्जवल निर्मल जल को। किस जल को? लिव के, प्रेम के, प्रेम के जल को भर। और ये वो जल है जिसको पिए 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 और फिर भी और पीने की तृष्णा बनी रहेगी। संसार भी भोगे 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 और भोगने की तृष्णा रहती है, पर इस अमृत को भी पिए, पीता है और पीने की तमन्ना होगी। ये भी छूटेगी नहीं। संसार के पीछे भागो तो भागना छूटता नहीं, राम से प्यार करो तो प्यार करना छूटता नहीं, कुछ ना कुछ तो चिपका रहेगा। आदमी की नियत ही ऐसी, आदमी का मन ही ऐसा। तो चिपक नहीं है तो कहा उसके प्रेम में चिपक, उसके प्रेम में अपने आप को लिपटा ले, ऐसे लिपटा ले कि बस फिर गंग जमुन उर अंतरे, तेरे ही भीतर ज्ञान की गंगा प्रेम की जमुना उतर आएगी। सहज सुन लव घाट तेरा हृदय का घट सहजता से भरेगा, सुन्नता से भरेगा। सुन्नता चिन्ह है, पहचान है कि तू सही चल रहा है। सुन्नता का अर्थ विचार शून्यता, सुन्नता का अर्थ ठीक वही जिसे बुद्ध कहता है एम्प्टीनेस, सुन्नता, नथिंगनेस। कहा इसमें आ जाएगा। और फिर तहां कबीरा मठ रचा मुनिजन जोवे बाट, ऐसे जगह में फिर तेरा आसन सदा के लिए टिक जाएगा, जिस आसन से फिर तू कभी न खुद गिरेगा न ही तुझे कोई गिरा पाएगा। पर अब बड़ी मुश्किल बात तो ये है, हम चाहते बहुत कुछ पाना, चाहते बहुत कुछ, पर क्या हम इसकी प्राप्ति की जो भी कीमत हो क्या वो देने को तैयार हैं? यहां मुश्किल आन पड़ती है, क्योंकि अगम पंथ मन थिर रहे बुद्धि करे परवेश, तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचे वा देश। कीमत दो, कबीर कहते कीमत दो, तन छोड़, मन छोड़, धन छोड़। आत्महत्या करने को नहीं कह रहे कि तन छोड़ दो, आसान मर जाओ ये नहीं कह रहे, छोड़ भी दो तन, मन को कैसे छोड़ोगे, धन भी छोड़ दो, छोड़ देते हैं बहुत लोग, त्याग देते हैं, पर मन को कैसे त्यागोगे? और जब तक ये मन है तुम्हारे साथ, जानो तन की आसक्ति भी साथ ही है, धन की लोलुपता भी साथ ही है। तो पहले मन त्याग, मन त्यागा तो तन भी गया, मन त्यागा तो धन भी गया, और फिर तुम पहुंच जाओगे उसके देश जहां बुद्धि को प्रवेश नहीं है, बुद्धि से नहीं पहुंच सकते, पर फिर भी तुम वहां पहुंच जाओगे। पहचान, सुन्नता। कबीर कहते हैं सबको पूछत मैं फिरा रहन कहे नहीं कोए, प्रीत न जोरे गुरु से रहन कहां से होए। आदमी पूछने के लिए पूछता है, और कबीर कहते ये बात सिर्फ यूं ही पूछने की नहीं है, और यूं ही तू पूछ भी लेगा, और गुरु कहीं कह भी दे कृपा करके, तेरी रहनी नहीं हो पाएगी। रहनी अगर चाहे तो जान, कबीर बहुत खुले शब्दों में कह रहे, आसान नहीं है ये, बहुत मुश्किल। मरना कभी आसान हुआ है, वो भी मन का। कबीर मार्ग कठिन है कोई सके ना जाए, अब पूछो इनसे अगर मुश्किल है तो काहे इतना चिल्ला के कह रहे हो कि आओ आओ इस रास्ते चलो, ज्ञान के रास्ते चलो, खुद ही तो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल मार्ग है। पर अजब बात, मुश्किल बस तब तक जब तक पहला कदम नहीं उठाया, पहला कदम उठा नहीं, कैराम जी उठा लेते हैं फिर अपने हाथों से और खूब भागते हैं, फिर तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। पर ये संभव तब हो जब सांची प्रीत हृदय में जगे, गया जो सो बहुरे नहीं कुशल कहे को आए। क्या पूछता है प्यारे अब, क्योंकि जो गया इस रास्ते पहला कदम उठाने भर की देर, फिर कहा सब कुशल, फिर सब सहज, फिर सब आसान, और फिर वो मुश्किल काम भी तुम कर जाओगे जो यूं संभव नहीं है। जहां न चीटी चढ़ सके राई न ठहराए, चीटी भी जहां चढ़ के न पहुंच सकेगी, और इतनी सूक्ष्म है वो जगह जहां छोटी सी राई भी टिकाऊ और न टिकती हो, मनुआ तहां लह राखिया तहीं पहुंचे जाए। और अब कहता है कबीर असंभव संभव हो गया, मन से ऐसी यात्रा शुरू हुई कि जहां चीटी ना पहुंच सके, इतने ऊंचे स्थान पर कबीर अब चढ़ गया है, जहां राई ना ठहर सके वहीं उठा करके मन रख दिया है। फिर कहता है कबीरा मार्ग कठिन है सब मुनि बैठे थाक, पूछ लो जरा मुनियों से महात्माओं से। थक गए माने न माने, स्वीकार करे न करे, पर हृदय तो उनका जानता है। जिस समाधि को ढूंढते हैं वो बड़ी दूर, जिस सहजता को ढूंढना चाहते हैं वो सहज ही कितना असहज हो गया। कहते कबीर जाओ पूछो, पूछो मुनियों से, सब थक के बैठ गए हैं। पर तहां कबीरा चढ़ गया गह सतगुर की साख। पर अपने गुरुदेव की कृपा से, फिर कह दूं किस गुरु की कृपा से, अंतर गुरु की कृपा से, कबीर कहीं नहीं अटकाते, किसी को नहीं अटकाते। जो खुद नहीं अटका वो दूसरे को भी नहीं अटकाता। वो खुद भी अपने अंतर ज्ञान गुरु से जुड़े हैं, वो दूसरों को भी कहते हैं वहीं जुड़ो, वहीं वहीं गमता मिलेगी, वहीं सब ज्ञान मिलेगा, वहीं सब ध्यान मिलेगा। तो प्रेम कर, सुन्नता के घाट पर अपने मन की नाव को लाओ और फिर ठहरा दो। फिर कहा मौज करो, जेही बन सिंह न संचरे, पंछी उड़ नहीं जाए। फिर तू ऐसे बन में, अपने अंतर की ऐसे आकाश में उतर आएगा, जहां अहंकार रूपी सिंह फिर गरज नहीं सकेगा। उलट बांसियां हैं ये कबीर की, पंछी उड़ नहीं जाए। अब कहां पंछी, कहां मन, कहां साधना, पर यहां मन ही को वो पंछी कहते हैं। जैसे पंछी उड़ जाए कभी यहां कभी वहां, ऐसे मन उड़ जाए कभी यहां कभी वहां। पर भीतर उस सुन्नता के घाट पर अगर पहुंच जाओ तो कहते हैं फिर यह मन पंछी ना उड़ेगा, फिर यह अहंकार रूपी सिंह फिर ना गरजेगा। रैन दिवस की गम नहीं, तह कबीर लव लाए। कब रात हुई कहा खबर नहीं, कब दिन हुआ कहते खबर नहीं, रात और दिन दोनों से परे। कबीर अब वहां ठहरे, जहां ठहरने के बाद सही अर्थ में पता लगता है कि ठहरना कहते ही किसको है, ठहरना शब्द का अर्थ क्या है। सब ठहरा, मन मस्त हुआ, अब क्या डोले, क्या बोले भी मुंह से अब, क्योंकि मुंह में इतनी शक्ति कहां, गांव गला पसार। कबीर कहते इतनी ताकत तो मुझ में नहीं है कि गला खोल खोल के गाऊं मैं तेरी महिमा को। बंदे को इतनी घड़ी पड़ा रहे दरबार, बस इतना ही बहुत है कि मालिक की आंख के सामने बस पड़ा है, हाजिर है, उसके सामने है, उसके सन्मुख है, और क्या चाहिए, और तो कुछ भी ना चाहिए। पर ये संभव कैसे हो, कहां लगन लगाओ। अब फिर खुद ही सवाल करते हैं, लागी लागी क्या करे, लागी बुरी बलाए। लगन लग जाए, लगन लग जाए, अरे पागल कुछ होश भी है, अगर लग गई लगन बहुत बुरी होगी, बहुत बुरी होगी, खूब रोवेगा, खूब पछतावेगा। क्यों, संसार छूट जाएगा, और जब संसार छूट जाएगा, जब वासना छूट जाएगी तो रहोगे तो संसार में, पर संसार के ना रहोगे तो हो गई ना बुरी। सोचो मांगने से पहले सोचो। तो प्रश्न करते हैं, लागी सोई जानिए जो वार पार हो जाए, क्योंकि लगन लगे तो हिसाब किताब ना चलेंगे, या आर या पार, या संसार में या संसार के पार। संसार में भी रहो और ईश्वर भी भजो, ये तो खूब मूर्ख बना रहे हैं। जो भजन करेगा बस वो फिर भज ना, उसकी सब दौड़ खत्म, फिर मन ठहरा, तो संसार का क्या हुआ। बस जो होगा सो होगा, जैसा चले बस वैसा चले, फिर फिकर सिर्फ एक की, सिर्फ एक की, लागी लागी क्या करे। लागी ना ही एक, लगन लगी नहीं प्यारे अभी तेरे को, कारण लागी सोई जानिए। फिर कहते हैं पता तब चले तुझे जब परे कलेजे छेक, जब तेरे कलेजे में छेक पड़े बिरह का, तड़प का, तभी तू जानेगा कि लगन कहते किसको है। झूठ की लगन, संसार बस झूठ ही जानता है, और झूठी लगन लगाओ और झूठ का पाखंड रचाओ। मुख में राम बगल में छुरी, मुंह में राम राम है, राम नाम की माला ओढ़ी है, पर गरीब का गला काटने से पहले जरा भी नहीं सोचेगा। ऐसा धर्मात्मा कि पाप करने से पहले ही तैयारी कर लेता है पाप छूटेगा कैसे। हरिद्वार जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, गंगा जी में नहाएंगे, खूब तर जाएंगे, पाप सारे छोड़ाएंगे गंगा जी में और हम हो जाएंगे मुक्त गंगा माई के प्रताप से। पर कबीर ठहरा। कबीर ठीक गंगा घाट में बैठा एक पंडित जी को स्नान करते देखता है और पूछता है, पंडित रामदयाल जी, सुबह सुबह इतनी ठंड में काहे ठंडे जल में घुसे? कोई पाप किए हैं रात को जो धोने गए हो? पंडित रामदयाल तो चिल्लाया और गुस्से में बिफरा हुआ कहता है, अरे गंगा माई सारे पाप धोती है, पर तू नीच जात क्या जाने गंगा की महिमा को। कबीर ने अपना तीर चलाया और कहता है, मैं तो इतना जानता हूं कि एक बार नहाओ तो सब पाप उतर जाने चाहिए, ये रोज रोज काहे नहाते हो? या तो रोज रोज पाप करते हो या तो तुम्हारे गंगा जल में वो ताकत नहीं कि वो पापों को धो दे, कुछ तो गड़बड़ है। रामदयाल ने अपनी तीखी आवाज में चुभती हुई गालियां निकालनी शुरू कर दी और वो भूल गए कि गंगा जी के जल में खड़े। पर कबीर ठहरे। कबीर अद्भुत है, बड़े प्यारे हैं और अपनी प्यारी प्यारी भाषा में कितने प्रेम से कहते हैं, यार बुलावे भाव से, प्रभु रोज बुलाता है तुझे, मोपे गया न जाए, पर हम कैसे गिरे हुए संसार के इस कुएं में पड़े, इस अंधकार में ठोकरें खाते हैं पर जाते नहीं पास उसके। धन मैली पियो उज्जला, धन शब्द का यहां अर्थ स्त्री है। कबीर स्वयं को स्त्री भाव में लाके कह रहे हैं, परमात्मा पिया तो उजला है और हम ठहरे मैले, मिलाप कैसे होगा? लाग न सको पाए इस मन की मैल के साथ, उस ईश्वर के चरणार वृंदों को छूं भी तो कैसे छूं, पास जाऊं भी तो कैसे जाऊं, थक गया प्रभु थक गया, कृपा कर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है तू? और ढूंढते 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 कहते हैं एक दिन कबीर को मिल ही गया कबीर। कबीर नाम है इस संत का और कबीर नाम है परमात्मा का, तो कहती हूं एक दिन कबीर को कबीर मिल ही गया। मालूम कहाँ? न बनारस में, न मंदिर में, न गंगा पे, न मस्जिद में, मिला तो कहाँ? अपने ही भीतर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाहे। कस्तूरी कहते हैं रहती है मृग की नाभि में, खुशबू आती है और मृग सोचता है कि कहीं किसी पेड़ से किसी झाड़ी से कहां से आती है, तो ढूंढता है भागता है। पर कस्तूरी तो उसकी अपनी ही नाभि में, बस ऐसे ही है। कबीर कहते हम ढूंढते रहे साहेब को जाने कहाँ कहाँ, और वो था अपने ही भीतर, और हम जाने ही नहीं, पहचाने ही नहीं। तेरा साई तुझ में ज्यों पोहपन में बास, पोहप का अर्थ है फूल, जैसे फूल में खुशबू है, कहा ठीक ऐसे तेरे इस दिल रूपी फूल में उसकी खुशबू है। कस्तूरी को ढूंढता है मृग और आदमी ढूंढता है ईश्वर को। कस्तूरी के लिए मृग जाता यहां वहां और आदमी भी ढूंढता है यहां वहां, पर जाकार जग ढूंढया सो तो घट ही माहे, तो अंदर ही है पास ही है, पर पर्दा दिया भर्म का तांते सूझे नाहे। है तो अंदर ही, पर जाने क्यों बीच में पर्दा करके बैठा? तभी तो कबीर कहता है ना, घूंघट के पट खोल दी तो है पीव मिलेंगे। अब ये घूंघट, ये पर्दा उठे कैसे, खुले कैसे, कैसे मिले वो जो मिला ही हुआ है, कैसे पता लगे उसका जिसका पता मैं भूल गया हूं, और अजब बात कब भूले ये भी पता नहीं, और ऐसे भूले कि भगवान भी अनेक खड़े कर दिए, हजारों मूर्तें हजार सूरतें बना दी और भूल गए कि साहेब तो एक था एक है, दूजा तो कोई था ही नहीं, दूजा है ही नहीं। पर हिंदू कहे राम, मुस्लिम कहे अल्लाह, अब दोनों लड़ते हैं। वो कहता मेरा राम बड़ा, वो कहता मेरा अल्लाह बड़ा। पर कबीर कहते साहेब मेरा एक है, दूजा कहाँ न जाए, दूसरा है नहीं तो दूसरा कहो नहीं। दूजा साहेब जो कहूं, साहेब खरा रिसाए। कबीर कहते कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा कि वो दो है, सच तो यह है कि अगर एक भी कहता हूं तो साहेब नाराज होता है। एक भी क्यों बोला, काहे बोले, बोलना ही गलत, चुप रह, सुन्नता में रह। पर अपनी सुन्नता के रस में अगर कबीर मस्त रहते तो हमें उसकी यह बाणी कैसे मिलती, कैसे मालूम होता कि कभी बनारस की नगरी में एक ऐसा व्यक्ति चला है जिसकी चरण धूलि से ज्ञान की किरणें ऐसी निकलती थी कि वो धूलि भी चंदन से भी ज्यादा कीमती हो जाती थी। कबीर बोलते नहीं, उस सुन्नता के घाट से बाहर ना आते, कैसे पता चलता कि कोई ऐसा भी रंगा गया था जो कपड़ों को रंगते रंगते सिर्फ जुलाहागिरी करते करते नहीं मर गया था, जो खुद तो रंगा ही रंगा, जिसने दूसरों को भी रंग दिया। सदगुरु है रंगरेज, चुनर मेरी रंगदारी, जिसने रंग दिया खुद को और अपने साथ जाने कितनों को। उस समय पर जब न टीवी था, न रेडियो, न अखबार, न मैगजीन, न सैटेलाइट, पर उस समय पर भी कबीर की बाणी गूंज गई राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सारा पंजाब गूंज गया था कबीर की बाणी से। ऐसे व्यक्ति की पुकार को, ऐसे व्यक्ति की आवाज को जिसने सुना नहीं, जानो उसके कानों का होना ना होना एक बराबर, यह कान पवित्र हो जाते हैं जब कबीर की इस अद्भुत बात को सुनते हैं, अद्भुत वाणी को सुनते हैं। शब्द सुरत के अंतरे, अलख पुरुष निर्वाण, लखने हारा लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान। शब्द की बात करता है, सुरत की बात करता है, शब्दों में उलझ के जो रह गया वो अज्ञानी, और जिसने शब्द का सहारा बना, अपने अंतर की सुरत को जगाया, होश को जगाया, पावन किया अपने अंतर को, और फिर जान लिया अलख को, निरंजन को, लखने हारा लख लिया। कबीर कहता है जिसको जानना चाहिए था उसको अब जाना, पर अपने आप से नहीं, गुरु के ज्ञान से, गुरु की कृपा से। ऐसे को जाना है जो स्वयं जन्म मरण से रहित है, जन्म मरण से रहित है। मेरा साहेब सोए, बलिहारी वह पीव की, जिन सिरजा सब कोए। उस अनंत को, उस अविनाशी को जाना और पहचाना उसको कि वो मेरे ही भीतर, मेरे ही अंतर में है, तो भ्रम का पर्दा खोलो। कैसे खोलें? लिव लगाओ। कैसे लिव लगे? बाहर की दौड़ छोड़ो। बाहर की दौड़ कैसे छूटे? सत्संग करो। सुनो, सुनो इन वचनों को बार बार सुनो, और फिर गुनो अपने भीतर, और फिर रमो, गाओ कबीर की रमैनियों को, सुनो कबीर के दोहों को, गाओ उनके संग, और बसने दो उस कबीर की महक को अपनी आत्मा में, और बस जाने दो उसके शब्दों की खुशबू को अपने मन में, कि कहीं ना कहीं तुम भी गा सको, तुम भी उसके साथ एक हो सको, और उस एक के साथ होने के लिए एक बार कबीर को बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी दुराव के सुनो, गुनो, और सब भ्रम के पर्दों को फोड़ के, तोड़ के, अपने इसी पिंड के भीतर बैठे उस अविनाशी पुरुष के साथ एक हो सको। कबीर पुकार के कहता है तुम भी पुकार जगाओ। कबीर जागने की बात कहता है तो अब जाग भी जाओ।